ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने ये भी बहुत सुंदर गोल्डन चांस लिया ज्ञान सरोवर के एकांत शांत वातावरण में रिटर्न जर्नी योग तपस्या। रिटर्न जर्नी का समय है ना, सबके ध्यान पर है कि अचानक बाबा साहब बच्चों को साथ लेके उड़ाएगा, लेके जाएगा। लेकिन रिटर्न जर्नी के पहले बाबा कहते हैं, बच्चे जो पालना ली है उसका रिटर्न भी करो। तो रिटर्न करना है, जो बाबा का कार्य रहा हुआ है उसे संपन्न करना है। हमारे जगदीश भाई जब अव्यक्त हो रहे थे तो बस एक ही बात बार बार कहें कि मैंने बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। सब सेवाएं कराई बाबा ने, लेकिन दो बातें रह गई जो बाद में संदेश में भी यही संदेश में कहा और जाते जाते भी यही कहा कि एक उनका संकल्प था कि नई सृष्टि में योग बल से बच्चे कैसे पैदा हों, उसके लिए मैं एक किताब लिखूं। बहुत चल रही थी उनकी रिसर्च इस पर। और दूसरा था कि जय जयकार का नारा लगे, बाबा आ गया है, बस यही है यही है। इसलिए उनके शुभ संकल्प जो इतनी सेवाओं का विस्तार करके एडवांस में गए, अभी जो बच्चे हैं उनको पूरा करना है। बाकी आज का जो विषय है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा विचार सागर मंथन करके लिखा है, जीवन की दवा। बीमारियों की दवा नहीं, जीवन की दवा, दिल की दुआएं। जीवन में बहुत सारी बातें जन्म से मृत्यु तक इस लंबी यात्रा में अनेक परीक्षाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं इस कलयुग में हर एक के सामने आती हैं, और उन सबको पार करने की बहुत सहज विधि सबके दिल की दुआएं हैं। दवा तो शरीर की बीमारी को ठीक करेगी, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां आ रही हैं तो कई अनुभव मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि 55 साल की इस अलौकिक जीवन की यात्रा में भी हर प्रकार की बातें आई हैं। ऐसे नहीं मधुबन में आ गए तो सब क्रॉस करके आ गए, मधुबन में रहते भी बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी बड़ों की निमित्त आत्माओं के दिल की दुआएं होती हैं तो बहुत सहज पार हो जाती है, समय नहीं जाता, ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होती, मन के अंदर उलझन नहीं होती, बड़े बैठे हैं पार हो जाता है। तो शुरू से लक्ष्य रखा बाबा के घर में, और कुछ सीख कर तो मैं नहीं आया। लौकिक में कोई इतनी पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री नहीं, 15-16 साल की उम्र में वो भी उत्तर प्रदेश के गांव से मैं आया। लेकिन दीदी दादी जो यज्ञ को बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो उनके दिल में भावना थी कि जो कुछ साकार में बाबा ने कहा है वो हमें पूरा करना है, और उसके लिए अच्छा ग्रुप तैयार करना, क्योंकि बाबा के सामने तो 15-20 भाई बहन ही थे। बाबा अपने सामने बूढ़ी बूढ़ी माताओं को कहता था, रहने दो मधुबन में, बाकी सब जाओ सेवा पर, यहाँ कोई नहीं रहेगा। इसलिए साकार के समय तो ना कोई बहनें ऐसी थी, और भाई जो थे वो भी कर्मणा सेवा के लिए ही थे, क्योंकि सब प्रकार की स्थूल सेवाएं थी, रोटी भी चूल्हे पर हो, लकड़ी पर या कोयले पर बनती थी। पानी भी हम लोग एक टंकी गर्म करते थे। धोबी घाट हाथों का मशीनें तो नहीं थी, लेकिन एक पाटे पर धोबी घाट होता था। तो ये सब कर्मणा सेवा के लिए भाइयों की जरूरत रहती थी। इसलिए कुछ भाई थे, और उसमें भी सबसे एक्टिव हमारे दादा विश्व रतन थे। हर बात में ऑलराउंडर थे। डॉक्टर की जरूरत है तो वही इंजेक्शन लगा रहे हैं, भंडारे में रोटी पकाने के लिए वही बैठे हैं, रात को पहरा दे रहे हैं, पोस्ट आ रही है उसकी एड्रेस डाल रहे हैं। हर बात में दादा आगे। इतना आज्ञाकारी तो मैं समझता हूँ आज तक हमने यज्ञ में किसी को भी नहीं देखा। और इतनी दुआएं थी उस आत्मा को बड़ों की, जो उन्होंने ऐसे सहज अपनी जीवन बिल्कुल स्मूथ चलाई, अंत तक भी नंबर वन में चले गए। कभी कभी दादा को पहरे की सेवा मिलती है, और हम लोग क्लास में जाते या पिकनिक करने चले जाते, दादियां हम भाइयों को या बहनों को लेके चली जाती, तो दादा से एक दो बार हम पूछते, दादा आपको संकल्प नहीं चलते, सब पिकनिक करने जा रहे हैं, सब दादियों के साथ शहर में गए घूमने गए और आपको पहरे पर बिठा दिया, सब मुरली में गए क्लास में गए और आप पहरा दे रहे हैं, आपको संकल्प नहीं चलते? तो बड़े मुस्कुराते हुए कहते, बाबा की सीट पर दादी बैठी है, दादी अगर मेरे को कहे तो मैं ना करूंगा क्या? कभी भी उन्होंने दादी माना बाबा, एक शब्द भी नहीं कहा होगा दादी मेरे को भी तो कहीं ले चलो, मेरे को भी तो कहीं भेजो। जो सेवा मिली, जो काम मिला, जी दादी। और हर कार्य एक्यूरेट करना, जरा भी चलाओ नहीं, काम चलाओ नहीं। इसलिए दादा ने हम सबको ऐसा ही सिखाया प्रैक्टिकल में कि बड़ों की दुआएं ले लो और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आ जाएगा, सब सीख जाओगे, लेकिन कभी भी ना नहीं करना, सदा हाँ जी करो, हाँ जी करो, सीख जाओगे, कहीं ऊपर से थोड़ी कोई सीख के आते हैं। तो शुरू से लेकर के हमने देखा कि जिन्होंने दादियों के आगे यज्ञ सेवा में हाँ जी किया, सच्चे होकर के ईमानदार रहे, उनको बड़ों की इतनी दुआएं मिली, जो उनकी कोई भी बातें आई, सेवाओं में विघ्न आए, रुकावटें आई, शायद आप सब जानते होंगे, हमारे पास हमारे दोस्त हमारे साथी थे बल्लभ दादा, सुना ना नाम, तो बल्लभ दादा दादी के इतना थे, मना हर सेवा में बल्लभ ये कहना है जी दादी जी दादी। तो एक बार क्या हुआ, वो थोड़ा जल्दीबाजी में दूध डिपार्टमेंट संभालते थे, तो दूध उबाल रहे थे, पूरा दूध उबाल रहे थे बड़े टब में, डालनी थी चीनी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वहीं चाय का डब्बा रखा था वो दूध में डाल दिया। अब पीने का समय, लाइन लगने वाली है सबकी शाम का, रात को दूध एकदम चाय बन गया, उसको ध्यान ही नहीं, मैं चीनी डाली या चाय डाली, और एकदम डब क्या होगा, पता नहीं दादी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो सच्ची ईमानदारी से दादी के पास तुरंत भागा, बड़ी दादी के पास, और जाके कहता है, दादी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया? दादी चीनी की जगह पर चाय पत्ती डाल दिया, और सारा दूध अभी पीने के लिए नहीं रहा, लोग क्या कहेंगे, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है, दूध नहीं है। तो दादी कहते, डरता क्यों है, ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अनाउंस कराओ, आज दादी ने आप सबके लिए दूध की चाय बनवाई है, अनाउंस करवाओ, और मैं आकर के सबको अपने हाथ से पिलाऊंगी। क्या उसकी दिल ले ली, आप समझ सकते हो, उस समय डांट भी लग सकती थी, कुछ भी कह सकती थी, थोड़ा समझ के करो, जल्दबाजी में क्यों किया, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको कहा, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, दूध की जगह पर सब दूध की चाय पियेंगे आज, चलो अनाउंस करो, तो मैं आती हूँ सबको पिलाऊंगी। सबको इतनी लाइन लगाई दादी ने, कहा आज दूध की जगह पर सबको दूध की चाय मिलेगी, दादी ने बनवाई है स्पेशल, अपने ऊपर ले लिया। बातें तो हमेशा आती हैं, नहीं तो डांट लगती, मूड खराब होता, इतने सारे कंप्लेन निकलती, बात छोटी सी है। दूसरी एक बात उसी के साथ सुनाता हूं। हमारे घर में उस समय मजदूर नहीं थे, अनाज मंगा लेते थे सारे साल का, गेहूं आता था, चावल आते थे, और सिस्टम ऐसी थी कि जो भी गेहूं अनाज आएगा वो सब धुलाई होगा, ऐसे नहीं रखेंगे अंदर। धुलाई के लिए मजदूर तो होते नहीं, उठा के स्टॉक से, स्टोर से शांति स्तंभ पर जा करके धुलाई करना, सुखाना वहां पर, और अगर कहीं बादल ऐसे दिखाई दे तो दादी आ जाए, घंटी बजाओ, सबको बुलाओ, अभी सबको जगा दो, रात को 1 बजा 2 बजा उठावा करके सब समेटो। चावल आ गए तो चांदनी रात में पूर्णमासी को सब शांति स्तंभ पर चावल बिछाओ, उसमें जो कीड़े होंगे भाग जाएंगे। तो ये शिष्य यज्ञ की, और सब काम भाइयों को ही करना, एक भी मजदूर नहीं, सब बोरे उठाओ रखो करो। और कभी रात को ट्रक आ रहा है, कभी दिन को आ रहा है, बाहर से खरीदारी हो रही, तो एक भाई थे तो एकदम काम करते हुए थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो गए जो संभालते थे स्टॉक, और आए एकदम, हम बैठे थे दादी के साथ ही, दादी मेरे से नहीं होगा ये चाबे लो, बहुत चिड़चिड़े में बोल दिए। और दादी ऐसे चुपचाप ऐसे देखती रही, कुछ नहीं बोली, चाबे ले लिया। और जब वो चला गया गुस्से में चाबे छोड़ के, दादी ने सामने से कहा राजू बल्लभ को फोन को बुलाओ, बल्लभ को बुला लिया और उसको बुलाया, और दादी ने कहा बल्लभ ऐसी है ये डिपार्टमेंट तो भाई चाबी फेंक के गया है, तुम संभालोगे? जी दादी, जी दादी। अब उसने वो डिपार्टमेंट लिया, उसके बाद उसकी क्या प्रगति, क्या उसको दुआएं मिली होंगी, वो जीवन की यात्रा की उसकी दुआएं मैं आपको याद कर, हर बात में सहयोग, यज्ञ माना उसका, सब कुछ उसके हाथ में, इतने सेवाधारी मिले, शांतिवन बना, ज्ञान सरोवर बना, सारे डिपार्टमेंट का वो हेड बन गया, सब मोटर गाड़ियां साधन सुविधाएं सेवाधारी सब उसके अंदर, और जिसने फेंका था वो बेचारा ऐसे ही बैठा अभी तक भी है, कुछ नहीं यज्ञ में काम, कोई डिपार्टमेंट नहीं उसको दी गई। और दादी कहती थी सबसे बड़ी सजा ये है किसी की सेवा को छोड़ा दो, और कोई सजा उसको नहीं दो, सेवा छोड़े अपने आप अंदर अंदर दुखी होगा, परेशान होगा, मन भारी भारी रहेगा, योग नहीं लगेगा। तो बड़ों की दुआएं कैसे ली जाएं, निमित आत्माएं, एक तो बाबा कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। एक तरफ हम योग लगाने की मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ बाबा सहज विधि बता रहे हैं, बच्चे दुआएं ले लो माँ बाप की। अगर किसी ने समर्पित बच्चों के हिसाब से मैं कह रहा हूं, आप सभी भी जो हैं यज्ञ पिता यज्ञ माता, हमारी यज्ञ माता कौन, हमारी काम धेनु माँ, उसका नाम है काम धेनु, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, जगत तंबा माँ, और कपल मुनि शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा कंबाइंड कपल है, कपल जोड़ा है। कपल मुनि के पास कामधेनु थे, और कोई भी वहां अगर चला गया तो उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। तो आज तक मेरा एक अनुभव ये रहा है कि जिसने यज्ञ पिता और यज्ञ माता को प्रसन्न कर लिया है, और उसके यज्ञ को अगर किसी ने अच्छी तरह से संभाला अपना समझ करके, आज की जनरेशन अपना नहीं समझती है, ड्यूटी समझती है, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा ड्यूटी है, लेकिन हम लोगों ने आज तक ये नहीं समझा हम ड्यूटी पर हैं, चाहे 8 घंटा है, चाहे 16 घंटा है, चाहे 24 घंटा की सेवाएं क्यों न हो, कराई है बाबा ने। अव्यक्त बाबा जब आते थे शाम को मैं बैठता था बाबा के साथ, सुबह हो जाती 12 मतलब शाम को 6 बजे आए, 12-13 घंटा हम बाबा के साथ, बाबा अगर एक शब्द बोले और मैंने नहीं लिखा तो मिस हो गया, सबसे मिस हो गया, इसलिए इतना जवाबदारी समझ करके दादी ने कहा है कि बाबा का एक शब्द भी तुम्हें छोड़ना नहीं है, लिखना है सब। रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, पूरी पूरी रात किया। जब पूरी रात टाइप मना लिख लिया हाथ से, टाइप नहीं हाथ से लिखते थे, फिर दादी अचानक बुला लेते, राजू रात भर बाबा ने क्या बात किया टाइप करके, दिन में भी रेस्ट नहीं, रात को भी जगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं कहा दादी अभी हम सो जाए ना थोड़ा दो चार घंटे, नहीं नहीं, जो दादी ने कहा जी दादी। एक बार बाबा किरवन वालों से मिलने के लिए आए, अचानक मैं संदेश दिया कि आज बाबा मधुबन के भाई बहनों से मिलेंगे। पता नहीं था ऐसा बाबा ने अचानक क्यों कहा, तो दादी तो बड़ा खुश, चलो आज मधुबन वाले सब मिलेंगे। हम लोग भाई थे 120 और बहने थे 30-40, 200 के अंदर ही स्टाफ था हमारा मधुबन का। बाबा शाम को 6:30-7 के बीच में आए, थोड़ी देर मुरली चलाई, दादी उठ करके बाबा मुरली सुन के चली गई कमरे में। मैंने मिलना शुरू किया शाम को 7:30 समझो शुरू हुआ पार्टी हम लोगों से मिलना, और सवेरे 7 बजे मैं बाबा के सामने था। दादी आ गई बाबा को विदाई देने और देखा कि ये तो भाई ही अभी तक मिल रहे हैं, बहनें तो रह गई सब। पूरी रात 120 भाइयों ने निकाल दिया बाबा के साथ। तो जब मैं बाबा के पास से उठा तो दादी ऐसे बोला, इधर आओ। क्या हुआ दादी? पूछती है मेरे को, आज बाबा ने रात भर क्या किया, तुम लोग बाबा के साथ क्या कर रहे थे? तो मेरे मुख से निकला, दादी आज बाबा ने हम लोगों को बहुत वरदान दिए। अच्छा, इतने वरदान दिए? बहने रह गई क्योंकि विदाई का समय आ गया, 7 सुबह का 7 बज गया, 12 घंटा बाबा बैठा हुआ। तो जब बाबा को विदाई दे दी तो मेरे को बुलाया, कहती सब टाइप करके ले आओ, मेरे को दिखाओ क्या बाबा ने बोला। अब वो इतना बोला था जो मैं सारा दिन टाइप किया, इतना एक मोटी किताब जैसा बना। जब दादी के पास लेके गया बहुत खुश हुई, इतना बोला बाबा ने, इतना रात भर क्या करेगा इसको। उन्होंने कहा दादी, तो बहुत सरल शब्दों में बोला, दादी जिसको बोला है बाबा ने उसको बहुत अच्छा फ्रेम में टाइप करके फोटो लगा करके सबको दे देते हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में लगाएंगे, पढ़ते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। दादी अच्छा, तुम्हारे लोगों के लिए बोला है रात भर? ये तो सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बोला है, तुम इसको मुरली के नीचे कैसे लिखेगा बना करके ले आओ, मुरली के नीचे लिखो। तो दादी इतना बड़ा है कैसे लिखूं? बोली नहीं नहीं सारा नहीं लिखना, वरदान बनाओ उसके। तुमने कहा ना बाबा ने वरदान दिए, अब बहुत तो बोला नहीं था बाबा ने। फिर मैंने सेट किया, जब सेटिंग किया तो जो 120 लोगों को बाबा ने बोला था मैंने 365 से ज्यादा वरदान उसके बनाए, और बना करके दादी के पास ले गए। हमने कहा दादी अब मुरली के नीचे शुरू करूं, ये 90 की बात है 91 की, क्योंकि गुलजार दादी को ऑपरेशन कराना था और ऑपरेशन के बाद व्यक्तिगत मिलना बंद हो गया था। वही समय था जो व्यक्तिगत बाबा पर्सनल मिले, और उसके बाद बाबा का डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि दादी के समीप कोई नहीं आएगा, बीमारी थी कैंसर था और ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद पर्सनल मिलना बंद हुआ। वही लास्ट हमारा मिलन था, और वो जब वरदान हमने 1 साल करके पूरे किए, मुरली के नीचे लिखे, तो सबको बहुत पसंद आए, सबने बहुत, दादी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वरदान मिल रहे हैं। तो जब पूरे हो गए तो मैं दादी के पास गया, दादी वरदान सब पूरे हो गए। पूरे कैसे हो गए? 69 से लेकर के बाबा बोल रहा है, इतनी मुरलियां चला रहा है, सब में तो वरदान ही है, तुम बनाओ सबके वरदान, सबको पढ़ो, सबके वरदान निकालो। जी दादी। और ये सब सेवाएं करते करते दादियों की अंदर अंदर दिल की दुआएं मिली। और उसके बाद जब पेपर आए, हमारे लौकिक के पेपर आए, पहला तो मैं इकलौता बेटा घर का, पिताजी के बड़े भाई एकदम एंटी, कैसे भी इसको माउंट आबू में नहीं रहने देंगे, ये रहेगा तो कुलदीपक कौन बनेगा, बहुत विरोध। लेकिन मैं आ गया कैसे भी करके, मधुबन में आया, ये सब डिपार्टमेंट संभाल लिया। तो उन्होंने माँ को कुछ कर दिया, माताजी को, लौकिक माँ को खिला दिया कुछ, और इतना पागल जैसी, राजू को बुला दो, राजू को बुला दो, राजू को बुला दो, सारे गांव में हंगामा कर दिया। लेकिन जब तक मेरे पास मैसेज आया तब तक उसने शरीर छोड़ दिया। अब दादी को जब पता चला कि इसके घर में तो और कोई है ही नहीं, चाचा जी कुमार थे, पिताजी जिनके हम दो बच्चे, एक बहन एक भाई, बहन तो सेंटर पर पहले से थी और मैं भी मधुबन आ गया, घर में एक भी कोई माता नहीं, घर संभालने वाला नहीं, भोजन बनाने वाला नहीं, तो दादी को बड़ी चिंता हो गई, अभी क्या होगा, इसको कैसे छुट्टी मिलेगी। तो दादी ने कहा जाओ तुम 15-20 दिन में सेट करना, अगर ज्यादा भी समय लगे तो भले काम करके सब सेटिंग करना, फिर बताना, क्योंकि कैसे भी करके उनको तो सेट करना पड़े, घर को तो वही माता ही संभाल रही थी सारा घर का काम, हमारे पास गाय बैल भैंसे सब थी, उनको चारा देना खिलाना पिलाना, गांव था। तो जब मैं घर गया तो दादी ने एक संदेश ही मेरे साथ भेज, कोई बात हो ना बाबा से पूछ लेना। तो दूसरे दिन मैंने भोग लगवाया और जब भोग में वो संदेश ही गई तो बाबा कहते हैं बच्चे को केवल 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन अगर यहां रहना है तो बाबा उसके ऊपर छतरी बनेगा, छत्र छाया रक्षा करेगा, और 3 दिन के बाद यहां रहा तो बाबा जवाबदार नहीं है, क्योंकि यहां बहुत भारी वातावरण है, इविल स्पिरिट्स का वातावरण है, माँ को भी बांध के रखा है, उसको भी मुक्ति नहीं मिली, इसलिए जो बच्चे को संकल्प आते हैं कि वहां हम जाके योग कराएंगे, यहां जाएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत है, जो करना होता है ब्रह्मा भोजन सबको खिला दो और यहां से निकल जाओ, डायरेक्शन आ गया। अब उस आज्ञा को पालन करने में मेरे आगे तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको दोनों को सेट कैसे करें, पिताजी के बड़े भाई तो अंदर मंदिर में रहते थे, पूजा पाठ करते थे, उनको तो कोई परवाह नहीं थी हम लोगों की, वो भी कुमारी थे, लेकिन चाचा जी पिताजी ये सब रहेंगे कहां, क्या करेंगे कैसे करेंगे। लेकिन हिम्मत की, बाबा का संदेश आया है, चल भाई 30 दिन में सब समेटा और मधुबन आ गया मैं। दादी ऐसे देख के कहती कैसे आ गया तुम, इतनी जल्दी निर्बंधन हो गया, छुट्टी मिल गई। मैं दादी बाबा ने मुझे ऐसे ऐसे संदेश दिया। अच्छा बाबा ने गाइड किया। मैं कहा दादी बहुत अच्छा किया। अब देखो बाबा की बड़ों की ये दुआएं इस जीवन की यात्रा में कितनी मदद करती है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं होते, सपूत नहीं होते, इतनी सेवाओं की जवाबदारी नहीं ली होती तो कौन हमारी रक्षा करता, कौन कहता ऐसे करो, फंस जाओ जाकर के दुनिया में, जवाबदारी है, करना पड़ेगा लौकिक की। बाबा तो समझाता ही है, जिन माँ बाप ने जन्म दिया है, पालना दी है, बच्चों का फर्ज है उनकी सेवा करना, उनको संभालना। लेकिन बाबा ने हमें ऐसा निकाला वहां से, और मैं जब मधुबन में आया 1 साल के अंदर ही पूरे घर को सेट कर दिया बाबा ने। चाचा जी को बुलाया आवास निवास में रख दिया, पिताजी को बुलाया लिटरेचर में रख दिया, और घर में बाबा को बिठा दिया, घर बेचा नहीं, कुलदीपक बाबा बनेगा। गीता मम्मा की खोली हुई थी, अभी तक भी चलती है, घर मंदिर है, कोई भिखारी लोग वहां नहीं रहते, मंदिर क्लास चलता है, कोई भी जाए या रहता है, भोजन भोग बनता है। कहने का मेरा भाव है कि अगर हम ही थोड़े कमजोर होते हैं और बड़ों को हमने दिल से जीता नहीं है, उनके दिल पर नहीं है, तो इन पेपर्स को पार करना सहज नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, चलते चलते कुमार कुमारियों के ऊपर एक और बात आती है, उनके जीवन में जर हंस के भी बात करेंगे, बहन भाई कहीं अकेले में बात कर लेंगे, फट से उनकी नाम रूप की बीमारी, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, कोई भी हमारी कोई ऐसे संस्कार नहीं है, दृष्टिवृत्ति, लेकिन देखने वाले जिनकी दृष्टि ऐसी है वो अनुमान लगाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो संगठन के अंदर उनको पीछे करने के लिए ढकेलना चाहते हैं, और ढकेलने का सबसे अच्छा साधन उसके ऊपर नाम रूप की बीमारी की लगा दो, इसका इसके साथ कुछ है। मेरे साथ भी ऐसा हो गया, क्योंकि एक समय आया जब कोई ने एक सेवा कर दिया, जब ना किया और दादी ने मेरे कहा राजू वो ना कर रहा, जीत आती मान लिया उसको। अब वो इतना जल गया, इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मेरे को, छोटी छोटी बातों की कंप्लेन जाने लगी। एक दिन दादी ने बुलाया सबको और बुला के ऐसा डांट लगाई कि राजू के लिए तुम अगर मेरे पास आए तो तुमको सजा मिलेगी। कोई कंप्लेन मेरे पास नहीं आई, दादी उसको जानती है। इतना बड़ों के दिल की दुआएं ऐसे बड़े पेपर में इंसान को हिला देती हैं। नहीं तो कहीं भी कोई गंदल नाम रूप की बीमारी लगा देता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ, और जोड़ देते हैं तो फिर वो सोचता अच्छा देखेंगे, नहीं भी है तो भी हो जाती। इसलिए बहुत इस बात पर ध्यान देना, अगर हमने बड़ों की दुआएं ली हैं, आज्ञाकारी बन के रहे हैं, सच्चे बन करके रहे, सच्चाई बहुत बाबा को पसंद है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, अगर साहेब की दादियों की बड़ों की निमित्त की दुआएं चाहिए तो अंदर एक बाहर रूप दूसरा नहीं चाहिए। अंदर बाहर की अगर समानता है तो बहुत निश्चिंत होकर के आप चलते रहो इस जीवन यात्रा में, कोई भी बातें आएंगी भगवान राजी है, वो अपने आप रास्ता निकालेगा, बड़े उसके लिए अपने आप कहेंगे हम जानते हैं इसको छोड़ दो तुम, इसकी जवाबदारी मेरी है। ये है दिल की दुआएं जो जीवन की हर यात्रा में दवा का काम करती, मदद करती हैं। अब बीमारी की बात सुनाता हूं, चलते चलते 84 आया काफी समय, और मैं एक ही था मधुबन में टाइपिस्ट, कोई दूसरा हमारा साथी नहीं था। 76 में हमने डिपार्टमेंट संभाली और 84 तक मुरलियां तो स्टेंसिल कटते थे, ये कॉपी प्रिंटर या प्रिंटिंग तो थी नहीं, तो 4000 कॉपी हो गई। हमने 400-500 से शुरू किया था और जब 4,500 हो गए तो हमको 4 बार स्टेंसिल काटने पड़ते थे, मुरली टाइप करते थे, और 4 बार मुरली टाइप करें, 3-4 पेज की मुरली 4 बार टाइप की, 16 पेज 15 पेज हुआ, उसको फिर से करेक्शन करें, पढ़ें, उसमें से वरदान निकाल, उसमें से प्रश्न उत्तर निकाल लें, सार निकाल लें, फिर दादी ने कहा धारणा का सार निकालो, मेरा सारा दिन इसमें बीत जाता और मैं अकेला ही सुबह से रात तक। और हमारे बाजू में हमारे निर्भय भाई रहते थे, और अगर मैंने दिन में टाइप किया तो टाइप की आवाज बहुत होती थी, सामने वाले की नींद जरूर पिटेगी, ठक 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 ठक, तो दोपहर होती थी वो रेस्ट में जाते थे, आ जाते थे, भाऊ थोड़ा तो रेस्ट करने देना, तुम भी रेस्ट कर ले, बाद में कर लेना, दोपहर को भी नहीं काम कर सकते थे रेस्ट का टाइम तो। लेकिन सब सेवाएं करनी है, कभी कंप्लेन नहीं किया क्या होगा आगे, ठीक है कर रहा था। एक दिन अकेले घूमने गया था, बहुत जोर से बरसात पड़ी, ठंडी लगी और बुखार आया। अब बुखार आया तो काम रुक रहा था, तो हमने एक अंग्रेजी वाले को डॉक्टर ऐसे दवाई ले ली, हाई डोज ले लिया कि दवाई बुखार उतर जाए, और ऐसा वो बुखार उतरा, बुखार तो दूसरे में भाग गया, लेकिन सारी पैर की और हाथ की जो नसें थी ब्लॉक हो गई, माना ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, चेहरा ठीक, हाथ को अगर कोई फूल भी कहे लो दबाओ तो दब नहीं सकता, इतना कमजोर हो गया, और पैर तो एक सीढ़ी चढ़ूं जैसे गिर जाऊं, नीचे गिर जाऊं। तो दादी तक बात गई कि राजू कुछ हो गया, तो दादी ने कहा जाओ इसको हॉस्पिटल दिखा के आओ, अपने हॉस्पिटल नहीं थे, सरकारी अस्पताल में ले गए, वहां एक डॉक्टर मजाक किया, वो देखा ऐसे चेहरे पर कुछ था नहीं, और उस समय पद यात्राएं निकल रही थी यूथ की, तो मेरे कहता है अरे तुमको तो कुछ नहीं है यार, तुम पद यात्रा में शायद जाना नहीं चाहता है इसलिए तुम कहता मेरे को ये कुछ नहीं है जाओ आगे, वो मेरे को भेज दिया। तो भाई लोग आए दादी को बताया, दादी वो तो कहता कोई इनको तकलीफ नहीं है, दादी तो ऐसा नहीं होगा, गलत बात बोला डॉक्टर, ये कभी ऐसे बोलेगा नहीं, जाओ इसको आबू रोड ले जाओ। उस समय संगम मोहन था, शांतिवन नहीं था, तो जब संगम मोहन में डॉक्टर को वहां बुलाया, वो डॉक्टर देख करके कहता ये तो बहुत बड़ी बीमारी पोलियो हो गया, और ये पोलियो ऐसा है जो ये उठ ही नहीं सकेगा बिस्तर से। उसने इंजेक्शन पर इंजेक्शन, दिन में 4-5 इंजेक्शन कंट्रोल करने के लिए देना शुरू कर दिया, और बीमारी को 3-4 दिन में उसने कंट्रोल किया, क्या बढ़ेगी नहीं, जितनी हुई उतनी तो हुई, फिर उसके बाद में इसमें पालनपुर रेफर कर दिया, जाओ डॉक्टर के पास। 8 दिन के लिए वहां गया। अब वो डॉक्टर ने अच्छी तरह से सब चेक किया, ठीक किया, लेकिन कहा कि बीमारी तो ठीक हो रही है लेकिन आपको भी 1 महीना फिजियोथेरापी करनी पड़ेगी। अब फिजियोथेरापी के लिए अहमदाबाद जाना पड़ेगा। अब इधर मुरली रुक गई, इधर सब सेवाएं रुक, टाइप में अकेला करता था। अब दादी कहे सिंधी जानने वाला चाहिए। मैंने कहा दादी सिंधी तो जानने वाली बहनें बहुत हैं और मैं एक हिंदी टाइपिस्ट को बुला लेता हूँ। मैंने ओम प्रकाश भाई को इंदौर में फोन किया, हमने भाई जी हिंदी वाले उधर आपके पास हैं, एक टाइपिस्ट भेज दो। टाइपिस्ट आया, फिर वहाँ की बहनों से रिक्वेस्ट किया आप सिंधी में पढ़ के सुना दो हिंदी, वो टाइप कर देगा। मुरली की सेवा बंद नहीं की, 10-12 दिन बंद रही होगी, लेकिन बाबा और दादी दोनों को हमारी फिक्र, हमारी नहीं, हमको नहीं फिक्र, बाबा और दादी को फिक्र। बाबा संदेश में भेजता है, मणिनगर में मैं था, 1 महीने के लिए गया था, संदेश में भेजता है, कहता है बच्चे को बोलो आटा गूंदे, आटा रोटी बनाते ना आटा गूंदते, फिजियोथेरापी के लिए वहां भले जाए लेकिन चुंबक वाले के पास, बाबा ने गाइड किया, चुंबक लगा दो चारों तरफ से, सर्कुलेशन ठीक करेगा और इसको आटा दे दो, सुबह शाम रोटी जो बनती है, 25-30 लोग वहां रहते थे मणिनगर में, 1.5-2 किलो जो आटा आता था मैं उसको घूमता था। डॉक्टर ने मेरे को कहा था तुम कभी टाइप नहीं कर सकते हो, और बाबा ने वो आटा गूंदने की जो सेवा बताई उससे सब उंगलियां हमारी चालू हो गई। ये बाबा की दुआएं मदद कर रहे हैं। और दादी जी को इतना है, क्या होगा इतने दिन, 1 महीना क्यों रखेगा, यहां से कोई को नहीं बोली और सीधा आ गई सेंटर पर मणिनगर, और आके कहती राजू को किस कमरे में रखा है। तो मैं जहां था, दादी को कोई नहीं बताया, नहीं दादी आने, उनको भी पता नहीं था, बहनों को भी, और दादी जी आई और अंदर आ करके मेरे को ऐसे देखा, तो मैं तो कहा कोई स्वप्न है क्या, दादी सामने खड़ी है, मैं भी खड़ा हो गया दादी को देख के। और दादी ने जो ऐसे गले से लगाया, हाथ से ऐसे सिर से ऊपर से नीचे तक हाथ फेरा, अरे चल ठीक हो गया, कुछ नहीं है, अब नहीं रुकना तुमको, ऐसी दुआ दी। जो वहां से मैं दूसरे दिन आया मधुबन में, हमने अलाउड टाइप, और मैंने टाइप करना शुरू की, जो मैं 10-11 मिनट में स्टेंसिल काटता था 9 मिनट में काटा, स्पीड बढ़ाई। खुशी हुई कि हम 1 से 2 हो गए, एक साथी मिला। और वो जो मैं 20-25 दिन अहमदाबाद में रहा, दादी ने बहुत युक्ति से कहा, जो एक भाई हमें गाइड कर रहा था, हमारे को ले जाता था हॉस्पिटल इधर उधर, उसको बोला इसको बिस्तर पर सोने नहीं देना। अब ये बात नोट करना आप सब, बीमारी में अगर तुम बिस्तर पर सो गए तो तुमको ये ख्याल चलेगा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। दादी ने कहा अगर उसके मन पर आएगा तो सदा के लिए बीमार हो जाएगा, तन पे आया है ठीक हो जाएगा। इसलिए मन को बिजी करने के लिए दादी ने क्या युक्ति रची, उस हंसमुख भाई हमारे थे वहां अहमदाबाद के अनन्य बाबा के रतन, उनकी ड्यूटी लगाई कि सुबह 6:30 बजे इसको तैयार करके, अहमदाबाद में 20-25 सेंटर है, रोज नए सेंटर पे इसका क्लास रखो। अब मेरे को उठा के गाड़ी में बिठाए और गाड़ी से उठा के उधर स्टेज पर बिठाए और मैं 1 घंटा क्लास कराया हर जगह पर, पूरे अहमदाबाद में क्लास कराया मैंने सुबह सुबह। और क्लास कराने के बाद वहीं नाश्ता करके चुंबक वाले के पास, चुंबक लगा देता था, 2 घंटा गीत बजते थे, कोई नहीं होता था, कोई देखने वाला, इधर उधर चुंबक बदलने वाला आता था। ज्ञान और योग का जो फाउंडेशन पड़ा, बाबा कहता ना बीमारी में भी भलाई, एक तरफ क्लास कराने की आदत बनी, उसके बाद भट्टियों के निमंत्रण मिले मुझे, क्लास कराना अच्छा लगा, सीख गया और चिंतन अच्छा चला, और योग के लिए एकांत मिली, चुंबक लगता था, मैं बाबा को याद करता था। कितनी बड़ी उसमें, इतने बड़े पेपर में इतना सहज रीति से बाबा ने ऐसे पार कराया, बड़ों की दुआओं ने ऐसे पार कराया, जो मैं आया और मुझे पता ही नहीं बीमार हूं, तब से लेकर के आज तक कोई गोली नहीं खानी पड़ी। 84 की बात सुना रहा हूं, लेकिन वो बड़ों की जो आशीर्वाद है, दुआएं हैं, बहुत हेल्प करती हैं। समय समय पर चाहे बीमारी आई, चाहे पारिवारिक समस्या आई, चाहे समाज में रहते परिवार के अंदर अलौकिक में कोई ऐसी बातें निकली, परिस्थितियां आई, पेपर आए, ये दुआओं ने इस यात्रा को बड़ा सुगम, बड़ा सहज बनाया हुआ है। और आज तक भी मैं कभी भी मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करता हूं। मेहनत क्या होती है मुझे आज तक पता ही नहीं है। इतना सरल रीति से सहज योगी जीवन बाबा ने दी है। सिर्फ अपनी बाबा की बनी हुई दिनचर्या में हम अलबेले न बने, आलसी न बने। बाबा ने हमारे कल्याण के लिए बहुत सुंदर हमारी दिनचर्या बनाई है, सेटअप है ऐसा। सुबह 3:30-4 उठना, चाहे मैं जहां भी हूं, आज तक रिकॉर्ड है 50 साल का कि मेरा अमृत वेले का नींद का समय नहीं गया, उठा जरूर हूं। बाबा ने 4 बजे सोने नहीं दिया, चाहे देश में गया चाहे विदेश में गया, अमृत वेला मिस नहीं हुआ। आधा पौना घंटा बैठ के अच्छी तरह से बाबा से रूह रियान करना, मदद लेना, शक्ति लेना, वरदान लेना, वो एक दिनचर्या का पहला पाठ जो है उसमें हम ये कहते हैं, बाबा कहते हैं श्रीमत से दुआएं मिलती हैं। जो श्रीमत को सिर माथे रखते हैं वही दुआओं के अधिकारी बनते हैं। बाबा की मुरली तो हमारा दिन रात खेलना ही उसी से है, लेकिन अभी भी जो रोज की मुरली अगर मिस होती है कोई कारण से तो ऐसे लगता है कि मैंने मिस कर दिया। मिस नहीं होनी, अभी तो कई साधन ऐसे सबके हाथ में है, मोबाइल में है, पहले तो होती नहीं थी। तो मुरली भी अभी तक भी न मिस होती है। और अलर्ट होकर के वरदान स्लोगन जो मैंने भेजा है आज के लिए, क्या मेरे को इसका इशारा है। मैं रोज पढ़ करके सुन करके अच्छा चिंतन करने का अभ्यास हो गया, इसलिए दूसरा नियम अमृत वेले के बाद मुरली है। और उसके बाद बाबा के साथ मैंने अपने ऑफिस में एक ऐसा सुंदर फोटो रखा है नीचे शांतिवन में। एक ही फोटो के अंदर 5 लोग हैं, 5 माना, एक ब्रह्मा बाबा है, 3D बनाते हैं ना, 3 होता है, 5 वाला है, मम्मा बाबा, तीनों दादियां, बड़ी दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, एक ही फोटो में 5 हैं। और जब मैं बैठता हूँ कुर्सी पर तो मैं 5 की छाया है मेरे ऊपर, और मैं 5ों की याद से बनाता हूँ मुरली। कभी भी सोचता नहीं क्या लिखना है, क्या वरदान देना है, क्या स्लोगन लिखना है। बाबा को कहता हूँ, बाबा मैं उंगली चलाता हूँ, तुमको जो कराना कराओ, तेरे बच्चे मुझे क्या करना, पालना तुमको करनी है। ऐसे प्यार से 1 सेकंड में बाबा को ऐसे पीछे देख लेता हूँ मुड़ के और बैठ जाता हूँ। लोग कहते हैं आज की मुरली आपने कैसे निकाली। भाई मैंने थोड़ी निकाली, बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने। हाँ ठीक है, हमें अगर उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो मैं सदा यही लक्ष्य रखता हूँ कि उसमें अपनी कहीं मत, अपनी बुद्धि कहीं मिक्स न करो। ये बाबा के बोल हैं, बाबा के महावाक्य हैं, वो एक्यूरेट जैसा बाबा ने कहा है वही लिखा जाए। भले हाँ उसकी सेटिंग करता हूँ, आगे पीछे कोई पॉइंट लगता है इसमें एक्स्ट्रा है तो उसको हटा देता हूँ, लेकिन सेट करके आज तक इतने सारे विश्व में 14 लाख से अधिक बाबा के बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाबा ने उस पढ़ाई का कार्य, भेजने का, तैयार करने का सौंपा है। तो हमारा यही लक्ष्य रहता है वो सब एक्यूरेट हो, उसमें जरा भी कहीं नीचे ऊपर ना हो। और अगर एक दिन भी मैंने लेट कर दिया तो इतने ब्राह्मणों के संकल्प चल जाएंगे, पहला काम हमारा है। इसलिए कोई भी कार्य के लिए अलबेलापन नहीं है, सुस्ती नहीं, कितना भी बिजी हो, बहुत सारी जवाबदारियां, विंग की जवाबदारियां हैं, चारों तरफ से इतने निमंत्रण है, क्या मैं आपको बताऊं किसको ना करूं किसको ना करूं। तो मैंने दिव्या बहन को बोला, भाई मैं आज का दिन दोपहर तक हूं, आज ही मैं जा रहा हूं पूना के लिए। कहती नहीं, ये क्लास करा के जाऊंगा। ठीक है, तो आपके बीच में आया क्लास का, लेकिन टॉपिक मुझे बड़ा अच्छा लगा। ले लो दुआएं माँ बाप की, सब समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बड़ों की दुआएं ले लो। मैं दुआओं के 2-3 दृष्टांत बताता हूं। आपको पता है समय पर साथ देने से अज्ञानी आत्माओं को भी दुआएं मिलती हैं। अगर बाबा के कार्य में कोई ने समय पर साथ दिया है, भले वो अज्ञानी भी हो, समय पर मदद किया, खड़ा हो गया, तो आज तक बाबा उसके दुआएं देता उसको। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ दादा थे एक आबू के, जिनका नाम था नेवन सिंह दादा, शायद नाम सुना हो आप लोग। नेवन सिंह दादा सरदार, सिख सरदार के सिंधी थे। अब जब पांडव भवन की जमीन ली गई, वो राजा का ऊपर एक कोठी है छोटी सी, पोखरण का था, पोखरण राजा की कोठी, पांडव भवन का ये घुड़साल था, घोड़े जहां बांधता था वो। तो जब वहां कोटा हाउस की, धौलपुर हाउस की समस्याएं खड़ी हुई, बहुत गवर्नमेंट पीछे लग गई कि वहां पर सर्किट हाउस बनेगा, उसको खाली करो, नोटिस पर नोटिस। वो तो उस समय राजेंद्र प्रसाद बाबू जी चीफ राष्ट्रपति थे, कुछ उनकी दोस्ती निकली एक भाई से, उसने उसको बोल करके रुकवा दिया, रुको नहीं, अभी नहीं खाली करेंगे जब तक स्थान इनको नहीं मिलता। बिस्किशोर दादा इसमें आगे रहते थे। जब स्थान लेने की बात आई तो वो पिया हुआ था खूब, पोखरण का राजा, और ये लोग गए उसको बात करके, प्यार से समझा के, हमको जरूरत है ये दे दो स्थान। वो 3.5 एकड़ पांडव उनकी जमीन वो ले लिया। और जब वो होश में आया तो उसको लोगों ने भड़का दिया, इतना सस्ती कैसे इनको दे दिया। अब वो तंग करने लगा भाई बहनों को, बहने भाई बोलेंगे क्या, हमारे लोग तो कुछ विरोध नहीं करेंगे, रोज तंग करे, रोज तंग करे, निकलना मुश्किल कर दिया। अब वो नेवन सिंह दादा आ गए बंदूक लेकर के, ज्ञान नहीं था, प्यार बहुत था बाबा से, और वो रात भर पहरा देते थे पांडव भवन के चारों तरफ, 24 घंटे की उन्होंने ड्यूटी ले ली कि कोई कुछ भी करे देखूंगा मैं। उनको देख करके सब चुप हो गए। लेकिन उसके बाद मैं जब आया हूं पांडव भवन में, कोई भी फल, कोई भी चीज जो पांडव भवन वाले समर्पित भाई बहनों के लिए आई है, दादी कहेगी तुम बाद में खाओगे, पहले दादा के यहां दे आओ। उसको दुआएं, आम आए मधुबन वालों को बाद में मिलेंगे, दादा के पास पहले जाए, नेवन सिंह दादा के पास अभी तक भी जाता है। हर चीज मधुबन में जो आई, दादी दीदी को पता था कि वैसे समय पर उसने साथ दिया है परिवार को, उसको देती रही। उसके बाद जब बेगरी पार्ट में एक दिन एक परिवार ने, जब बिल्कुल नहीं था, जिस दिन बिल्कुल नहीं था, सुबह भंडारी वाली पूछी बाबा आज क्या बनेगा, आज 1 रुपया भी नहीं है भंडारे में। बाबा कहता वेट एंड सी बच्ची, 10 बजे पोस्ट देखेंगे फिर बताऊंगा। 10 बजे की पोस्ट में 500 रुपया एक खुला लिफाफे में ऐसे आया था, और जिसने भेजा था बाबा तो पता है, उसको टच किया होगा। आया समय पर और सब कुछ राशन आया, और 500 उस समय बहुत होते थे, सब आया और समय पर भोजन बना, और सबको 1 बजे पूरा भोजन मिला अच्छा, जितने भी थे 150-200 लोग। लेकिन बात है ये 73 की, बहुत बड़ा उसका परिवार झाड़ जैसा, माता जिसने भेजा था उसका नाम था, पति का नाम दादा सावित्री और दाताराम, ये हांगकांग में रहते थे, सिंधी थे, लेकिन इनका बहुत बड़ा परिवार, बेटा बहू, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई कहीं, कोई हांगकांग में। तो इन्होंने सोचा कि बाबा व्यक्त हो गए हैं, हम सब मिलने चलते हैं, क्योंकि सावित्री माता बहुत बाबा, बहुत मानती थी बाबा को। तो पूरे परिवार को लेकर के आई, करीब 30-40 लोग आए, पूरे जितना भी पोते धोते सब पूरा परिवार आया। और मधुबन में जब आया, 73 की बात है, तो उस समय गुलजार दादी अचानक मधुबन में आई थी, बाबा का प्रोग्राम नहीं था, ऐसे आई थी, और दीदी जी टूर पर थे, दादी और गुलजार दादी मधुबन में थे। तो उन लोगों ने कहा जब गुलजार दादी यहां है तो बाबा को भोग लगाए, दादी लगाए। अब हिस्ट्री हाल था उस समय, मेडिटेशन हाल भी नहीं था। गुरुवार का दिन था, गुलजार दादी भोग लगाने के लिए गई और बाबा आ गए अचानक, कोई प्रोग्राम नहीं। उन सबके बीच में बाबा आए और ऐसे दृष्टि देते रहे, और फिर कहते बच्चे जो भोग बना है वो ले आओ सब। आज बाबा इन बच्चों के साथ पिकनिक करेगा। अब बाबा इतना रहम, इतना दिल से दुआ दे रहा था, जैसे प्यार कर रहा था। फिर बाबा ने कहा, आप बच्चों को लगता होगा ये सब ज्ञानी नहीं है, ये तो ऐसे ही है। बाबा आज इतना इनके प्रति क्यों अपना दिल खोल रहा है? बाबा ने खुद कहा, इस बच्चे ने ऐसे समय पर भगवान को मदद की जब कुछ भी नहीं था, इसलिए भगवान को इसने बांधा है, इसलिए आज भगवान इसको रिटर्न करने आया है। समय पर साथ देने से बड़ों की दुआएं मिलती हैं, और यज्ञ में जब समय आया, कहते जब भगवान पर भीड़ पड़ी तो भक्तों ने मदद की, तो ऐसे भक्तों को भगवान ने मदद करने के लिए कैसे वो आता है वो हमने प्रैक्टिकल देखा। करीब 2-2.5 घंटा बाबा उनके बीच में रहा, हर प्रकार से उनको प्यार दिया, अपने हाथ से खिलाया और सबके दिल लिए, और बाद में चला गया वो रिटर्न दिया करके। शायद सुना होगा दीदी की भाभी कमला, जो हमारा जसलोक हॉस्पिटल है ना, दीदी के भाई का है, और वो बहुत बाबा को, दीदी और खास करके क्वीन मदर को बहुत मानती थी, दीदी के लौकिक माँ को। जब बेगरी पार्ट शुरू हुआ उसको पता था, वो छिपा छिपा करके कुछ न कुछ भेजती थी, परिवार वाला एंटी सारा वो भेजती थी। जब बाबा अव्यक्त हो गए और दीदी और दादी हेड बनी संस्था की मुखिया, तो एक दिन दीदी ने कहा, कमला भाभी को दादी बुलाना चाहिए। सुनो ये कहानी, लंबी कहानी है, मैं था आमद वन में। कमला भाभी को बुलाना चाहिए, वो आएगी, भले परिवार वाले एंटी हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसने बहुत यज्ञ को मदद की है, समय पर साथ दिया, अपनी मम्मी के लिए, क्वीन मदर के लिए बॉम्बे में मकान लेकर के दिया कि कभी भी कुछ पांडव भवन में दिख तकलीफ हो, बीमारी हो, तो बॉम्बे में रहे। तो दादी ने कहा, जी दादी दीदी कभी तो बात करती नहीं, एक दूसरे के ऐसे समीप थी, क्या कहते थे, शरीर 2 आत्मा 1। तो दीदी ने ऐसे ही बात रखी और दादी ने कहा, जी दादी बुलाते हैं। तो उसको मैसेज दिया, कमला भाभी एक बार तो माउंट आबू आओ, बाबा अव्यक्त हो गए हैं। अब कमला भाभी तैयार हो गई आने के लिए, आऊंगी, आएगी तो रहेगी कहाँ, क्योंकि एक भी कंबाइंड बाथरूम वाला कमरा नहीं मधुबन, केवल एक दादी और एक दीदी, 2 ही कमरे थे जिसमें कंबाइंड लेटरिन बाथरूम थे, और दीदी का खाली करना, दीदी बड़ी एज थी, दीदी का खाली नहीं करना। दादी कहती है, दीदी आप संकल्प नहीं करो, मैं जाके जनरल में रहूंगी, लेकिन मैं अपने कमरे में कमला भाभी को रखूंगी। आप सोच सकते हो ज्ञानी नहीं है, लेकिन उसकी सहयोग किया, रिटर्न देने के लिए कम से कम 5 या 4 दिन वो यहां रही है। दादी ने खुद जनरल में 10 लोगों के बीच में सोई और जनरल लेटरिन बाथरूम में गई और अपने कमरे में उसको सुलाया, क्योंकि उसको ये भासना नहीं आए कि शायद इनके पास अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत प्यार दिया, बहुत उसको रिफ्रेश किया हर प्रकार से। तो कहने का मेरा भाव है, जिसने समय पर साथ दिया उसको दिल की दुआएं मिली, दिल की दुआएं लेनी है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। हर एक आत्मा, कोई भी बात है कैसी हो, लेकिन एक लक्ष्य रखो कि दुआएं ही हमें मदद करेंगी, साथ देंगी। बड़ी दादी की तो कितनी बातें मैं आपको सुनाऊं, प्रैक्टिकल की बातें हैं। दादी हमेशा यही कहती रही, बीमारी के समय एक दिन हॉस्पिटल से आई थी बॉम्बे से, मैं गया, बैठ गया साथ में, अकेला ही थे, लेटी थी, मैं, दादी आज मुझे एक संकल्प आता है, बोलो बोलो क्या आता है। दादी पत्र पुष्प मैं बंद करना चाहता हूँ। कहते क्यों बंद करेगा? दादी मुझे बहुत संकल्प चलते हैं कि एक दिन था जो आप लिखाती थी, फिर उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया कि आप लिख के लाओ मैं पास कर दूंगी, अभी मैं आपके नाम से लिखता हूँ मुझे दिल खाती है, मैं नहीं लिखूंगा, ना आप पढ़ती हैं ना आप लिखाती हैं, और मैं प्रकाशमणि बन करके लिखता हूँ मैं कब तक लिखूंगा ये। तो मैं ऐसे जिद करके बैठ गया, हमने नहीं अब छोड़ना, अरे तुम इतना अच्छा लिखता है, दादी ने तो तेरे को सिखाया है, दादी की छुट्टी से लिखता है, कोई अपने मन से थोड़ी लिखता है, सब दादी के ही तो शब्द होते हैं। बहुत मनाने की कोशिश, मैं माना नहीं, मैं बैठ रहा हूं, मैं नहीं लिखूंगा अभी। अब गुलजार दादी आई मुस्कुराते हुए अंदर, मुरझाते थे, आज क्या तुम दोनों रूह ध्यान कर रहे हो, हंसते हंसते खड़े खड़े। तो मैं तो चुप, मैं दादी को देखता रहा। बड़ी दादी बोली, दादी इतना अच्छा पत्र लिखता है, सब इतने रिफ्रेश होते हैं, आज कहता है नहीं आप नहीं लिखाएंगी तो मैं नहीं लिखूंगा। दादी इसको समझाओ ना, मेरे लिए कहती इसको समझाओ ना। और गुलजार दादी मेरे को समझाने की बजाय दादी को बोलती, दादी ये कहता तो ठीक है। अब दादी ये कहता तो ठीक है, आपको कुछ तो लिखाना चाहिए। दादी चुप, जैसे भगवान ने बोल दिया हो। गुलजार दादी माना भगवान, बाबा वो कभी नहीं सोचती थी, गुलजार दादी ने बोला माना वो बाबा ने बोला। अब मेरे को देखती है से, अच्छा लिख भाई लिख। अब मैं तो कॉपी पेन लेके गया था, मैंने कहा लिखाओ, लिखो दादी 100% ओके है। मैंने मैं नहीं लिखूंगा, ये कैसे लिखूंगा, और कहेंगे लोग झूठ लिखता है। कहती अच्छा मुझे को हुआ क्या, अब मेरे से पूछती मेरे को क्या हुआ है। दादी आपको कुछ नहीं हुआ है। मेरे को क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो 100% ओके हूं। मैंने कहा दादी अभी ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है, आप बेड पर हैं, आप मुरली नहीं सुना सकती, चल फिर नहीं सकती, और आप कहती मैं ओके हूं, कैसे लिखूं मैं। अरे तो कोई डॉक्टरों का चक्कर है, ये तो 19 भी चलता है ना, मुझे कोई बीमारी है। बाबा की दुआएं, आप सब बड़ों की दुआएं, सेंट सब भाई बहनों की इतनी दुआएं, मुझे कोई दर्द है क्या, मुझे कोई तकलीफ है क्या, मैं बिल्कुल ओके हूं 100%, तुम लिखो। गुलजार दादी हंसते हुए कहते हाँ लिख दो लिख दो। दादी कह रही ना लिख दो, फिर दूसरी लाइन ही कहती ऐसे किया हाथ, मैं बहुत सबको दुआएं दे रही हूं, सबको भाकी पहन के प्यार कर रही हूं, ऐसे किया। फिर कहती अरे रुको रुको गुलजार, गुल मेरे को ये लिखाना चाहिए, मैं कैसे भाकी पहन सकती हूं, तो बाबा पहनेगा। अब गुलजार दादी कहती दादी आप नहीं पहनोगी तो कौन, बाबा तो अव्यक्त है, वो तो थोड़े देर के लिए आता है चला जाता है, साकार में तो बाबा ने आपको रखा है, आप जरूर पहनो, लिखो ये। गुलजार दादी कहते लिखो ये। अब ऐसे रू रियान हमारी आधा पौना घंटा चली। कहने का मतलब है इतनी सब परिस्थितियां आई, बीमारी आई, कोई भी बातें आई, लेकिन सदा बाबा दुआएं सब कर रहे हैं, सब कुछ नहीं मेरे को है। तो हम सब सबकी दिल की दुआएं लें, और कुछ न करो, कोई बड़ा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दूसरे को साथ दो, सहयोग दो, समय पर आगे बढ़ाओ, उन सबकी दुआएं ले लो बस। तो दुआएं समय पर साथ देंगी, जीवन यात्रा की हर समस्या को पार करा देंगी, और हम सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। ठीक है, तो सब दुआएं ले रहे हो ना, 3 खाते फुल तब रिटर्न जर्नी होगी। एक गुप्त पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बनाते जाओ, गुप्त पुरुषार्थ, दिखावा नहीं, और वो पुरुषार्थ केवल है आत्म अभिमानी स्थिति का। देह मान गल जाए, मैं आत्मा हूं, मैं इस कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, गुप्त पुरुषार्थ करो, अच्छी प्रारब्ध बन जाएगी। स्वराज्य अधिकारी स्टेज से भी स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा गुप्त पुरुषार्थ है, सहज पुरुषार्थ है, अपने साथियों की, अपने बड़ों की, अपने परिवार की, सबकी निमित्त आत्माओं की दुआएं लो, समय पर हाजी करो, साथ दो, सबकी विशेषताएं देखो, सबको आगे बढ़ाओ, हाजी करो, दुआएं ले लो। ये है दूसरी बात, वो खाता जो समय पर साथ देता है, कोई भी परिस्थिति आएगी, सबकी दुआएं हैं, सूली से कांटा बन जाता है, कितना भी बड़ा पेपर आया ऐसे पार हो गया, जो उसके कारण हमारा समय, हमारी शक्तियां खत्म नहीं हुई। और तीसरा बाबा कहता है ऐसा गुप्त करो दान, एक हाथ से करो दूसरे को न पता चले, तो पुण्य जमा हो जाएगा, पुण्य की पूंजी आपके साथ जाएगी। तो इसलिए पुण्य की पूंजी जमा करने का समय है, दुआओं का स्टॉक पार कराएगा, और गुप्त पुरुषार्थ अच्छी प्रारब्ध बना देगा। जब हर ब्राह्मण बच्चे को 3 खाते फुल करके क्या करना है, रिटर्न जर्नी करनी है। ओके, ओम शांति।